श्रृंगार की प्रवृत्ति विदेशी मेल में। यद किसी देश के लोग विदेशी शासकों के संपर्क में आते हैं तो केवल नकल ही नहीं होती, वे प्रभावित भी हो चलते हैं। भारत में विदेशी मुसलमानों के शासन के परिणाम स्वरूप यहाँ के लोग उनकी नकल करने और उनकी चाल ढाल से प्रभावित भी होने लगे। धीरे धीरे उनके यहाँ जम जाने से उनके साहित्य का भी प्रभाव थोड़ा ही सही भारतीय साहित्य पर भी पड़ने लगा। पहले तो दोनों ओर के लोगों के बीच एकता का सूत्र बांधने के प्रयत्न हुए, जिनमें धार्मिक भावनाएं भी काम कर रही थी, पर आगे चलकर शुद्ध साहित्यिक प्रभाव भी पड़ने लगा। जब मुसलमानी शासकों के पैर यहाँ जम गए, तब नेता जनता के बीच यह प्रचार करने को कटिबद्ध हुए कि ईश्वर एक ही है, राम रहीम में कोई भेद नहीं है, एक दूसरे में संबंध सूत्र बांधने के लिए प्रेम की पुकार मचने लगी। उसकी महत्ता का प्रतिपादन भावुकता के साथ किया जाने लगा। ईश्वर का एकत्व और प्रेम की महत्ता दोनों ऐसे विषय थे जो दोनों ओर के लोगों की विचारधारा के अनुकूल पड़ते थे। विदेशी लोगों को धार्मिक भावना में सगुण को स्वीकार नहीं था और यहाँ के दार्शनिक विचार के भीतर निर्गुण की ही प्रधानता थी, यद्यपि व्यवहार के क्षेत्र में सगुण का भी स्वीकार था। इसलिए उभयनिष्ठता के कारण वे लोग निर्गुण को ही लेकर आगे बढ़े, पर निर्गुण की उपासना का प्रचार करते समय निर्गुण को भजो, निर्गुण को ध्याओ कह देने से ही काम नहीं चल सकता। निर्गुण की उपासना के लिए कोई स्थूल आधार तो था नहीं, इसलिए स्वभावतः पहले निर्गुण के लिए नाना प्रकार के कुतूहलपूर्ण विशेषण सामने लाए गए और जीव जगत को लेकर बुझौल बुझाई जाने लगी। इसके लिए आलंबन की महत्ता के प्रतिपादन से काम नहीं चल सकता था, इसी से प्रेम भाव की महत्ता और उसकी तीव्रता का प्रतिपादन होने लगा। प्रेम का अतिरेक विदेशियों की धार्मिक प्रवृत्ति के अनुकूल पड़ता था। सूफियों की विरह वेदना प्रसिद्ध ही है, इसलिए उस वेदना और उसकी तीव्रता की ओर यहाँ के लोग भी झुके। मुसलमानी साहित्य में जो कविता लौकिक आलंबन के प्रति भी होती थी, वह भी सूफी भावना की आड़ में ईश्वर की ओर संकेत करने वाली कही जाती थी। आगे चलकर जब कई लोग ईश्वर के उस संकेत से हटकर लौकिक प्रेम की व्यंजना में प्रवृत्त हुए, तब भी उनकी वह तीव्रता दूर न हुई। कलेजे के जलने से निकले हुए धुएं से नए आसमान बनाते ही रहे, विरह ताप से सूर्य तपता ही रहा। सारी सृष्टि आशिक के खून या प्रेम की कलाई से लाल दिखाई पड़ती ही रही। प्रेम की पीर और प्रेम की तीव्रता का प्रदर्शन करने के लिए सिर का उतारना, कलेजे का चाक होना आज कितनी ही मार काट की बातें फारसी और उर्दू काव्य में आया करती हैं। बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं जो भारतीय काव्यशास्त्र की दृष्टि से जुगुप्सा उत्पन्न करने वाली हैं और जो इसी विचार से रस विरोधनी अर्थात विभत्स मानी जाती हैं। जैसे जायसी की ये पंक्तियाँ, भूंज सरागनी वह नित मांसु, लागिउ जरय जरय जस भारू, फिर भिजेंस तजीऊ न पारू। उक्त प्रेम की पीर और तीव्रता की व्यंजना का प्रभाव निर्गुनिया नाम से पुकारे जाने वाले हिंदी के संत कवियों पर पड़ा ही, सगुणोपासक भक्तों पर भी थोड़ा बहुत पड़ा, और आगे चलकर प्रेम अथवा श्रृंगार की व्यंजना करने वाले साहित्यिक कवियों पर भी पड़ने लगा। सगुणोपासक भक्तों के प्रेम का आलंबन प्रत्यक्ष था, इसलिए जुगुप्सा वाली प्रवृत्ति उनमें घर नहीं कर सकी। वे रूप पर मुग्ध होते और सौंदर्य की अनुभूति में जुगुप्सा का भाव जगना बुरा समझते। यहाँ तक कि जब आगे चलकर मुसलमान भी भगवान के रूप पर मुग्ध हुए तो उनमें भी वह प्रवृत्ति नहीं रही। प्रेम की जिस पीर का उल्लेख ऊपर किया गया है, उसकी परंपरा के कुछ संकेत देखिए। कबीर साहब कहते हैं कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाह, शीश उतारें कर धरें तब पैठे घर माएं। यह सिर उतारना और उसे हाथ पर धरना विदेशी प्रभाव है। उन्होंने उपासक की वेदना के संबंध में जितनी बातें कही हैं, वे विदेशी प्रभाव से ही प्रभावित हैं। मीराबाई ने माधुर्य भाव की उपासना ग्रहण की थी, पर बाहरी प्रभाव उन पर भी पड़ा। सूफियों के प्रभाव से उनकी कविता का भजन प्रभावित है। प्रभाव चाहे सीधे न होकर निर्गुणियों के माध्यम से ही क्यों न हो, कहीं कहीं उनके पदों में जुगुप्सा व्यंजक विदेशी पद्धत भी मिलती है। सूली ऊपर सेज पिया की मिरणों की विधि होए से इसका पता चल जाता है। यदि इतने से संतोष न हो तो निम्नलिखित पद देखिए। काढ़ कलेजा मैं धरूं रे कौवा तू ले जाए, ज्या देशा मारो पियो बसे सजनी वे देखें तू खाए। कलेजा काढ़ कर दिखलाने तक तो कोई बात नहीं, पर कवे का उसे खाना क्या है। कृष्ण भक्त कवियों में से जिन्होंने भगवान की लीला गौण रखकर प्रेम के प्रसार का प्रयत्न किया है, उनमें से कई में इस आशिकी रंग ढंग और विदेशी प्रेम पद्धत की झलक है, जैसे किशनगढ़ वाले नागरी दास में और आगे चलकर कुंदन शाह आदि में तो उसका अतिरेक हो गया है। हिंदी की कविता जब कृष्ण लीला के भक्ति काव्य से हटकर शुद्ध साहित्यिक रूप पकड़ने लगी, तब नायिका भेद की परंपरा से मिलकर वह एकदम श्रृंगार काव्य हो गई। पर कृष्ण का आलंबन मिल जाने से भक्ति में विदेशी रंग ढंग केवल प्रेम की पीर के रूप में बना रहा, जुगुप्सा वाली की प्रवृत्ति हट गई। यहाँ तक कि देशी काव्य परंपरा के मेल में आकर विदेशी कवि तक उसे छोड़ बैठे। रहीम आदि में ऐसी रचनाएं बहुत कम मिलती हैं। जुकी हारी जोबन लिए हाथ फिरे रसहेत, आपन मांस चखाई कै रकत आन को लेत। बिरही के उर्मे गड़े श्याम अलग की नोक, बिरह पीर की लाबई रकत पियासो चोंक। रहीम रत्नावली पृष्ठ 35। इस प्रकार रसखान भी जो श्री कृष्ण के रूप पर मुग्ध हुए थे, प्रेम की कठोरता का प्रतिपादन करते हुए ऐसी ऐसी सिद्धांत की बातें करते हैं। को या फांसी कहत को कहत तरवार, नेजा भाला तीर को कहत अनोखी ढार। पै एते हूँ हम सुनो प्रेम अजूबो खेल, जा बाजी बाजी यहाँ दिल का दिल से मेल। पर कृष्ण के प्रेम की चर्चा चलने पर विभत्स व्यापार एकदम सामने नहीं लाते, हाँ भावुकता का साथ देने वाली वेदना बराबर मिलती है। हिंदी के श्रृंगार काल के रीतिमुक्त कवियों आलम ठाकुर घन आनंद बोधा आदि में जो प्रेम का अनूठा रूप मिलता है, वह भी विदेशी प्रेम की पीर के ही कारण। घन आनंद की कविता समझने के लिए प्रेम की पीर की ही पहचान आवश्यक मानी गई है। समझे कविता घन आनंद की ही आँखिन नेह की पीर तकी। इन कवियों की कविता में प्रिय से मिलने के लिए पर्वत नदी नाले लांघना, उसकी गली में फेरी लगाना, भाले तलवार की चोट से हरदम छटपटाया करना, प्रेम का पिशाच लगना, मरने से कम की चर्चा ही न करना आदि कितनी ही बातें ऐसी हैं जो विदेशी रंग ढंग से पूर्ण हैं। ये अपने समय में उस साहित्य से बहुत प्रभावित हुए जिन्होंने आगे चलकर अत्यधिक प्रभावित होना प्रारंभ किया। उनकी बात खुल गई जैसे बोधा आदि की, पर जो कुशल थे उन्होंने उसे ढंग से ग्रहण किया जैसे घन आनंद आदि ने। बिहारी और घन आनंद ने यह बतलाया कि विदेशी प्रभाव किस रूप में ग्रहण करना चाहिए। बिहारी और घन आनंद ने विदेशी प्रवृत्ति को भारतीय रंग ढंग में मिलाकर सामने रखा। बिहारी की कविता में विरह की उक्तियाँ उसी चमत्कार प्रियता का संकेत करती हैं जो फारसी काव्य में अधिक पाई जाती है। विरह की उहाक उक्तियां भारतीय परंपरा के भीतर भी स्वीकृत हैं। बिहारी ने विदेशी रंग ढंग की भारतीय पद्धति के भीतर ही देखने दिखाने का प्रयत्न किया है। कुछ उदाहरण लीजिए। इत आवत चल जाति उत चलो छसातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सोल रहे लगी उशासन साथ। कृष्णता के कारण सांस लेने में शरीर का हिलना आदि भारतीय परंपरा में भी मिलता है, पर उसके झोंके से करवट बदलना, झूला झूलने लगना आदि विदेशी चमत्कार का परिणाम है। संस्कृत में पुराने चमत्कारवादियों के प्रभाव से ऐसा रंग ढंग अवश्य बढ़ा था, पर उस सीमा तक नहीं जिस तक फारसी का मुबालगा पहुंचा। राज्याश्रय और आगे चलकर मुसलमानी शासन ने ऐसी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया। करी बिरह ऐसी तऊ गैल न छाड़त नीच, दीने हूँ चश्मा चखन चाहे लहे न मीच। कजा के ढूंढते फिरने की उक्ति से इसमें क्या अंतर है। भारतीय परंपरा में कृष्णता का जो वर्णन होता है उसमें आश्रय की दशा का चित्रण रहता है, बाहरी आरोप द्वारा कृष्णता की व्यंजना नहीं होती। मौत के ठिकरे की यह झपट क्या है। नित संसव हंसव बचत मनो सुइ अनुमान, बिरही अग्नि लपटन सकत झपट नमी चुसिचान। बिरह ताप की अधिकता से कपड़ों को भिंगो कर जाड़े में भी नाना प्रकार के शीतल उपचारों के प्रयोग करके नायिका के निकट पहुंचना क्या है। बिहारी में सामान्यतया यह विदेशीपन लक्षित नहीं होता, क्योंकि इन्होंने विदेशी ढंगों को ग्रहण किया है जो भारतीय परंपरा की ओट में पल्लवित हो सकते हैं। प्रेम के निरूपण में, सौंदर्य की व्यंजना में तथा अन्यत्र भी बहुत सी ऐसी बातें आई हैं जो बाहरी प्रभाव हैं, पर बहुत दूर तक उन्हें ले जाने का यत्न इन्होंने नहीं किया। इन्होंने प्रायः भद्देपन को बचाया है। देखिए, निर्दय नेह नयव निरख भयव जगत भयभीत, यह न कहूँ अब लौ सुनी मारी मारिये जुबीत। मारी मारिये से आगे जाकर मार काट का विभत्स व्यापार नहीं खड़ा गया। डर न टरय नींद न परय हरय न काल विपाक, छिनक छाक उछकय न फिरी खरो विषम छविछाक। नशे का कोई अन्य रूप यहाँ भी नहीं है। जौन जुगुत पिए मिलन को धूरि मुकुति मुहदीन, जौ लहिये संग सजन तो धरक नरक हूँ कीन। दोजख की आग में राख होने वाले आशकों की उक्ति से इनमें कम अंतर है, पर दोजख की आतिश की भीषणता का निरूपण यहाँ भी नहीं है। सुकुमारता की ये उक्तियाँ लीजिए, भूषण भार संभारिये क्यों इहिन सुकुमार, सूधे पाए न धर परत शोभा ही के भार, पहिर न भूषण कनक कए कहीं आवत ही हेत, दर्पण कैसे मोरचे देह दिखाई देत। तस्वीर खींचने का बखेड़ा भी वैसा ही है। लिखन बैठ जाकी सभी गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। भाषा की सफाई और मुहावरों के प्रयोग भी कहीं कहीं बाहरी छाप का पता देते हैं। केवल एक उदाहरण देखिए, मूड़ चढ़ाए ऊ रहे पन्यों पीठ कच भार, रहे गरें परी राखिये तऊ हिये पर हार। मूड़ चढ़ाए पन्यों पीठ गरें पर हिरे पर, चारों पद लाक्षणिक हैं और मुहावरे बंदिश को अनुकृत का संकेत देते हैं। हिंदी की परंपरा में इस प्रकार मुहावरों को लेकर कहने सुनने की परंपरा न थी। रीतिमुक्त स्वच्छंद कवियों में इस प्रकार की कहन बहुत मिलती है, उन पर बाहरी छाप अधिक पड़ी। परंपरा पालन से दोष भी होते हैं, पर परंपरा का पालन करने वाला अपने रूप की रक्षा भी करता है। वह प्रवाह में बह नहीं जाता, हवा में उड़ता नहीं, यह भी सत्य है।